और बच्ची के ये दिन, तपस्या के ये दिन हम पूरी ही तरह से इसका फायदा उठाएं। हमारे बीच हमारी आदरणीय शीलू बहन जी उपस्थित हैं, पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से रात दिन सेवा जिनकी धुन रही है, और विशेष बाप दादा ने आपको शुरू से स्पेशल सेवाओं के लिए ही माध्यम बनाया है। सबसे पहले पहले टीवी की सेवाओं की शुरुआत आदरणीय शीलू बहन जी से हुई है। राजयोग शिविर जब शुरू हुए मधुबन में खास, तब से ही राजयोग शिविर की पहली पहली शिक्षिका आदरणीय शीलू बहन जी रही हैं। देश विदेश में बाबा के संदेश को जितना सहज सरलता से और अपनी मधुरता के साथ फैलाया है, ये आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। आप वर्तमान समय एजुकेशन विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी बहुत स्पेशल सेवाएं दे रही हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, बाबा की बहुत विशेष इंस्ट्रूमेंट हमारी आदरणीय शीलू बहन जी हमें आज भट्टी का लक्ष्य भी देंगी, और मधुबन बेहद भूमि की तरफ से सभी का स्वागत भी करेंगी आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। तीन बार कहेंगे ना, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि द्वारा मिलते हैं, और फिर ओम शांति द्वारा मिलते हैं। तो हमारी कृति बहन ने आप सबका बहुत सुंदर शब्दों में स्वागत तो कर ही लिया, परंतु मैं चाहूंगी कि कृति बहन अपना भी परिचय दे। पहले अपना परिचय दो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि मधुबन में तो आप भट्टी करने आए हो, वो तो आपका भाग्य है ही, लेकिन ऐसी अच्छी टीचर मिली है आपको, उसका भी बड़ा भाग्य है आपको। तो मैं चाहूंगी आप खुद ही परिचय दे, अपना अच्छी तरह से परिचय दे, क्योंकि तीन दिन आप इनके साथ ही रहेंगे, और जो भी कुछ भी बातें हैं हमारे सुरेंद्र भाई और बहादुरगढ़ की टीचर्स तो है ही है नीमच की, लेकिन ये आपकी प्रमुख टीचर रहेगी, न्यूट्रल है ना, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से आपकी जो भी बातें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी करेगी। तो पहले अपना परिचय दे दें।
थैंक यू शीलू बहन। नाम कृति बहन है, 43 ईयर से ज्ञान में चल रही हैं,
43
हाँ जी 43
वर्षों से,
और 36
बचपन से, कितनी उम्र है,
54
तो 11 साल की उम्र,
और 36 ईयर से 36 वर्षों से समर्पित रूप से अब सेवाएं दे रही हैं। शुरू से ही सेवा का स्थान अहमदाबाद रहा है, और विशेष सेवा दो प्रकार की बाबा ने करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया है। काफी वर्षों तक, 10-12 वर्ष तक अहमदाबाद की एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, जब अपने यज्ञ में इतना वैल्यूज और वैल्यू एजुकेशन की बात नहीं थी, उस समय पर पूरा ही सेमेस्टर का वैल्यू एजुकेशन का कोर्स करने के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में वहां जाने का एक बहुत सुंदर मौका मिला।
निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है,
और इसके अलावा यूथ विंग की सेवाओं के लिए बाबा ने विशेष जिम्मेवारी दी है। आप सबको ज्ञात होगा ही कि यूथ विंग की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस है आदरणीय चंद्रिका बहन अहमदाबाद में रहती है, और इसीलिए ऑफिस अहमदाबाद में है, तो पीछे का सारा ही कारोबार लुक आफ्टर करने की जिम्मेवारी मिली हुई है और इस हिसाब से बहुत सारे कार्यक्रमों में इन्वॉल्वमेंट और बड़ों से बहुत नजदीक रहने का एक सुंदर मौका मिला है। और इसी के तहत यज्ञ में ज्यादा आना जाना होता रहा, तो अभी उस एक स्टेप आगे में पिछले काफी वर्षों से जब भी यज्ञ में भट्टियां होती है, चाहे पांडव भवन चाहे शांति वन में, तो उन भट्टियों के कोऑर्डिनेशन का भी एक बहुत बड़ा भाग्य मिलता है। कहने को जिम्मेवारी होती है कोऑर्डिनेशन की, लेकिन इसी बहाने हमें अपनी तपस्या और अपनी साधना का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो तीन दिन आप सबके साथ भी इसी बहाने भट्टी का एक मौका मुझे भी मिला है। वर्तमान समय अहमदाबाद में सैटेलाइट और उससे संलग्न और एक सेवा केंद्र का संचालन के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है।
तो आप सभी पहले आपका परिचय तो ले लें। जो नीमच और नीमच से संबंधित भाई बहने आए हैं वे हाथ ऊपर करें। कितने हैं सुरेंद्र भाई? 172। उसमें टीचर्स जो नीमच के वो हाथ ऊपर करें। 7, 8। अच्छा, और बहादुरगढ़ के भाई बहने हाथ ऊपर करें। ये कितने हैं? 83। अच्छा, 63। और टीचर्स बहादुरगढ़ की? 5। हाथ ऊपर करें। अच्छा अच्छा, ठीक। तो सचमुच मधुबन में जब बाबा के बच्चे आते हैं तो मधुबन की कितनी रौनक हो जाती है। और बाबा ब्राह्मण बच्चों को देख करके इतने खुश होते हैं। बाबा कहेंगे भले पधारे, भले पधारे। दादी जी भी बहुत खुश होते थे। अभी भल साकार में बाबा मम्मा दादियों को हम मधुबन में मिस तो करते हैं, लेकिन जो यहाँ का वायुमंडल है, वातावरण है, वाइब्रेशंस है, तपस्या का जो माहौल है, वो तो बाप दादा ने, मम्मा ने, दादियों ने जो इतना कूट कूट के भरा है, उसके आकर्षण से तो सारी दुनिया यहाँ आती है। और जब से अव्यक्त बाप दादा ने पांडव भवन के लिए कहा कि मधुबन में ये चार धाम, जो मधुबन की ही विशेषता है, पांडव भवन की विशेषता है, वो और कहीं नहीं है, तो खास चार धाम की यात्रा करने ब्राह्मण बच्चे तो पांडव भवन मधुबन आते ही। वैसे तो सब मधुबन ही है, विस्तार है, लेकिन माई बाप तो पांडव भवन है, बाकी तो सब भुजाएं हैं। तो इसीलिए मधुबन में यहाँ भट्टी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा भाग्य है आपका। तो वैसे तो कुछ ऐसे भी भाई बहने होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, देखो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। शांति वन में तो आते होंगे, रहते होंगे। ज्ञान साहब फिर से हाथ उठाओ, जो मधुबन में रह रहे हैं अभी तक, जो आए होंगे पर शांति वन या ज्ञान सरोवर में रहे होंगे, पर पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, देखो कितनी है। हाँ, कितनी है। तो ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। पिछले ग्रुप में तो भाई बहने कहते थे, बहुत पुराने पुराने भाई बहने थे, वो कहे कि हम 25 साल के बाद मधुबन में रह रहे हैं। 25 साल कभी मधुबन में नहीं रहे, जब से शांति वन बनाए हम मधुबन में आए ही नहीं। नीचे से आते थे, नीचे से चले जाते थे, पर अभी इतना अच्छा मौका मिला मधुबन में रहने का, तो ये भी देखो मुन्नी बहन को बुद्धि में आया कि पांडव भवन में भी बठिया हो, ज्ञान सरोवर, शांति वन में तो बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। और वैसे तो पांडव भवन में जो ज्ञान सरोवर में, शांति वन में प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ से भाई बहने तो आते रहते हैं यहाँ, चाहे ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे नॉन बीकेज भी हैं, पांडव भवन में तो आते ही हैं। लेकिन यहाँ पर रह करके बठी करें, ये हमारी मुनि बहन को बुद्धि में आया। पिछले दो तीन सालों से कर रहे हैं, तो वो तो फिर भी थोड़ा सा करते थे, लेकिन इस बार तो कहाँ, अप्रैल से शुरू हुआ है, सितंबर तक चलेगा, तो विस्तार कर दिया है। हालांकि पता नहीं, बारिश तो खूब पड़ती है, अगस्त में तो बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ती है, अगस्त को कहते थे डिसगस्ट, ऐसी बारिश पड़ती थी, इतनी ह्यूमिडिटी, सब गीला गीला गीला, पहले जमाने में तो कपड़े भी नहीं सूखते थे अगस्त के महीने में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीन महीना बहुत बारिश पड़ती थी। फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी। फिर अप्रैल में जून जाकर के थोड़ा अच्छा मौसम होता था, लेकिन अभी तो वो ठंडी भी नहीं है, वो बरसात भी नहीं है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ भी है, बाकी सब जगह। नीमच में भी तो बहुत गर्मी होगी ना, कितनी टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है शांति में? 40 तक 42। यहाँ तो फिर भी 35-36, दोपहर के समय थोड़ी तपत हो जाती है, लेकिन यहाँ की राजस्थान की तो ये विशेषता ना, रातें ठंडी होती है, दिन गर्म होते हैं, क्योंकि रेत तपती भी जल्दी है तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। और पहाड़ भी ऐसे ही है, पत्थर के पहाड़ है, तो खुश्क हवाएं भी बहुत चलती है। तो देखो इस बार भी बारिश का आह्वान तो कर रहे हैं, कहीं जल्दी आ जाए कुछ पता नहीं है, परंतु बाबा के घर में तो जब भी आए ऐसे ही लगता है कि बाप के घर आए हैं ना। दुनिया का जो माहौल है उससे बहुत दूर होते हैं, वहाँ तो कितना दुख, कितनी अशांति, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, क्या नहीं है, इतना संसार का वातावरण दिन प्रतिदिन कितना बुरा होता जा रहा है, घोर कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। पर मधुबन आओ तो क्या लगता है, जैसे स्वर्ग भूमि में पहुंच गए हैं। तो ये तपो भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, जितने नाम गिनो उतना कम। और मधुबन तो मधु माना मिठास, प्रेम का सूचक, और बन माना एकांत, वैराग्य, जंगल या बन, अकेला, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये अनुभव। तो संगठन का भी अनुभव है जो मधु से संकेत है, और बन माना अकेला, एकांत, जो सन्यासी भी बन करके जैसे अपनी तपस्या में रहो, तो बहुत सुंदर समन्वय है। संगठन का भी इतना सुंदर अनुभव यहाँ होता है, और एकांत का भी आप बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं यहाँ। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं यहाँ बड़े बड़े कोठे बनाए हैं, सब टेरेस जो ऊपर के है ना कोठे, पहले तो ये सब खुले थे, तो भाई अकेले अकेले जाकर के तपस्या करो, अभी तो ये सोलर के पैनल्स लग गए हैं चारों तरफ। लेकिन ये चार धाम बाबा के, जो ब्रह्मा बाबा की स्मृति के स्थान है, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये बाप दादा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। बाबा के कमरे में जाओ तो ऐसे लगेगा जैसे हम अपने माता पिता के पास आए हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा कितना अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, वो बाबा के कमरे में अनुभव करते हैं। और जो बाबा से बातें करनी है वो बाबा से बाबा के कमरे में करते हैं, क्योंकि साकार में भी बाबा अपने बच्चों से यहाँ मिलते थे और अभी भी अनुभव होता है कैसे बाबा बिल्कुल हमारे सम्मुख हैं और हम बाबा से रूरिहान कर रहे हैं। फिर बाबा से मात पिता का अनुभव करके फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा से शिक्षक का अनुभव करते हैं, कैसे बाबा वहाँ सनली पर बैठ करके मुरली चलाते थे। जितनी भी साकार मुरलियाँ हैं वो सब इस सनली पर बैठ करके बाबा ने चलाई है। भले उस समय बाबा के सामने 15-20 भाई बहने होते थे, मधुबन निवासी बाबा के समय तो बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बहनों को तो बाबा मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनें जो है ना वो सेंटरों पर रहने के लिए, इसलिए नाम ही रखा पांडव भवन, पांडवों के लिए ही है ये, क्योंकि बहनें सेंटरों पर शोभती है। यहाँ पर कोई ऐसी थोड़ी बूढ़ी माताएं थी जो यज्ञ की पुरानी दादियां, पुरानी एक बहरी थी, एक दिखाई नहीं देता था, अंधी थी, तो वो दोनों बूढ़ी माताएं यहाँ रहती थी। तो एक बार बाबा को किसी ने पत्र में लिखा कि बाबा हम सेंटर खोल रहे हैं, आप हमको हैंड्स भेजो। तो बाबा ने उनको लिख दिया ये दो है चाहिए तो भेज दो बाकी हमारे पास मधुबन में कोई हैंड्स नहीं है, आप कोई अपने हैंड्स तैयार करने हैं, बाबा कहाँ से भेजेंगे। तो वही रहते थे, जो कोई भी मधुबन में बहने आती थी बाबा उनको रहने नहीं देते थे। दादी प्रकाशमणि अनुभव सुनाते हैं कि मैं समझो कहाँ से सेवा करके आई और दिल होती थी मैं कम से कम 2 दिन तो मधुबन रहूं बाबा के संग, लेकिन बाबा 2 दिन भी नहीं रहने देते थे, जाओ बच्ची वहां सेवा है, जाओ जाओ बच्ची। तो और मनोहर दादी के लिए भी ऐसा है, बाबा मनोहर दादी और प्रकाशमणि दादी और दादी जानकी, हाँ मतलब ये कैसे ये दादियां उस समय तो उड़ता पंछी बन करके भारत के कोने कोने में सेवा में जाते थे, बाबा उनको भेजते थे। एग्जीबिशन चारों तरफ बहुत होती थी तो हैंड्स बाबा से मांगते थे तो बाबा कहते थे कुमार का बच्ची जाओ वहाँ, हाँ वहाँ अच्छे चाहिए जो एग्जीबिशन समझाए, तो दादियाँ जाती थी। उस समय तो यही बड़ी बहनें थी, लेकिन कैसे बाबा ने कितना बच्चों को तैयार किया। तो चाहे बाबा के सामने वो थोड़े बच्चे होते थे लेकिन बाबा कहते थे मैं केवल इन बच्चों को देख के थोड़ी वाणी चलाता हूँ, क्योंकि बाबा की मुरली सब तरफ जाएगी, और केवल सब तरफ जो अभी बच्चे हैं उनके लिए ही नहीं है पर आने वाले बच्चे बहुत हैं, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। तो जब बाबा ये कहते थे तो उस समय लगता था कितने आएंगे कितने आएंगे, हा? बाबा कहते थे क्यों लग जाएगी, तो सोचते कैसे होगा क्या होगा, बाबा कहते तो हैं। लेकिन जो बाबा ने आज से 50 साल पहले मुरली चलाई थी, ये सब 60 के बाद की मुरलियां हैं, तो 50 साल लगभग हो गए, और तो वो मुरलियां अभी जब हम सुनते हैं तो लगता है कितनी प्रासंगिक है, बिल्कुल जैसे अभी के लिए है। तो उस समय लगता था कि ये तो बाबा कहते तो हैं, लेकिन कभी कभी सोच चलता होगा, लेकिन अभी जब सुनते हैं तो लिखते हैं अभी के लिए। तो जो बाबा ने भविष्य का संकल्प किया तो वो अभी प्रैक्टिकल में अभी अनुभव हम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके बाबा को टीचर रूप में देखते हैं, हाँ बाबा के आगे थोड़े से बच्चे लेकिन वाणी इतनी जबरदस्त चलती थी क्योंकि बाबा जैसे सारी दुनिया को संबोधन कर रहे हैं। पर फिर भी बाबा कहते थे बाबा तो अपने बच्चों के आगे ही सुनाते, पर तुम बच्चों का काम है सबको सुनाना, बाबा नहीं कहाँ जाएंगे। एग्जीबिशंस होती थी तो 64 से एग्जीबिशंस शुरू हुई तो बाबा को बुलाते थे, अभी जो मुरलियां चल रही है उसी समय की है, बाबा को मधुबन से बुलाते थे कि बाबा आप आएं एग्जीबिशन देखें कैसे हम सेवा करते हैं। तो बाबा को निमंत्रण देते थे कि बाबा आप आकर देखो एग्जीबिशन, कैसे हम बाबा के बच्चे समझाते हैं लोगों को सारे चित्र। तो बाबा ने लिखा, बच्चे बाबा तो नहीं आ सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो बड़ी अथॉरिटी इनके साथ है, तो उनको लेकर कहाँ जाएंगे ऐसे। तो बाबा तो अपने बच्चों से ही मिलते हैं, इसलिए जो वहाँ एग्जीबिशन आप करते हो वो आबू में ले आओ, यहाँ ले आओ आबू में, तो बाबा यहाँ देखेंगे। तो फिर कैसे, अभी जो म्यूजियम है ना जहाँ अपना नक्की लेक के पास, तो उसके सामने वो एक हॉल जैसा था, अभी तो वहाँ पर कुछ शोरूम बन गया है कुछ, तो वो स्थान मिला था और वहाँ एग्जीबिशन लगाई थी और बाबा को ले गए थे। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है संज्ञान देने का एग्जीबिशन के द्वारा। फिर बाबा के आगे वो प्रोजेक्टर लेके गए, आज भी बाबा के मुरली में था, कि बाबा सोचते हैं कि एग्जीबिशन से ज्यादा सेवा होती या प्रोजेक्टर से, तो उस समय जो प्रोजेक्टर से सेवा करते थे तो कमरा अंधेरा करना पड़ता था, एक एक स्लाइड डालनी पड़ती थी, प्रोजेक्टर की वो मशीन थी, एक स्क्रीन होती थी, अंधेरा करना पड़ता था और लोगों को बिठाते थे। तो कई भाई बहने कहते थे वो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो सबके गले सूख जाते, इतना बोलना पड़ता है, अभी 100 जने बैठे हैं और एक ही प्रोजेक्टर स्लाइड शो चल रहा है और सब देख रहे हैं, तो कईयों को ये अच्छा लगता था। तो बाबा ने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं है, आज भी बाबा ने कहा ना ये अच्छा नहीं, क्योंकि उनसे चेहरे तो दिखाई नहीं देंगे, अंधेरे में कोई सो रहे हैं क्या कर रहे हैं पता भी नहीं चलेगा। आजकल तो प्रोजेक्टर अलग हो गए हैं, स्क्रीन अलग प्रकार की हो गई, लाइट बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो देख भी सकते हैं। तो उस समय तो बिल्कुल अंधेरा करना पड़ता था तब जाकर के प्रोजेक्टर चलते नहीं, सुरेंद्र भाई ने भी बहुत सेवा की होगी उस प्रकार की। तो बाबा को वो प्रोजेक्टर पसंद नहीं है, एग्जीबिशन बहुत पसंद है। और जहाँ अभी म्यूजियम है वो एक होटल था, तो बाबा जब आए देखने के लिए, बहुत सीजन थी अप्रैल में जून में महीने में का, मई का महीना था, तो लोग बहुत थे माउंट आबू में, सीजन थी, टूरिस्ट बहुत थे। तो बाबा ने कहा यहाँ एक परमानेंट बन जाना चाहिए, तब म्यूजियम नहीं था, यहाँ परमानेंट बन जाना चाहिए। तो बाबा की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जो भी म्यूजियम है, तो बाबा ने कहा ये स्थान बहुत अच्छा है क्योंकि सब टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो उस समय होटल था वो। तो बाबा ने रमेश भाई को कहा कि ये होटल जो है उसके मालिक को ढूंढो, वो कहाँ रहता है, क्या है, कैसे वो हमको दे सकता है, क्या कर सकता है, तो यहाँ परमानेंट बन जाए। तो उसके बाद जैसे रमेश भाई मिला है, उनसे मिला मालिक से और कैसे डील किया और वो जमीन ली और उस पर सारा बनाया, वो तो फिर बड़ी कहानी है। लेकिन कैसे बाबा ने वो उस समय देखा का ये सेवा का साधन बहुत अच्छा है एग्जीबिशन। तो देखो तब से इतनी सेवाएं एग्जीबिशन मेलों द्वारा हो रही है और वर्तमान समय तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम चारों ओर धूम मची हुई है नहीं इनकी बहुत। और अभी तो उज्जैन में इतना बड़ा मेला हो रहा है, वहाँ 40 फीट ऊंची वो दुर्गा की मूर्ति बनाई है, 40 फीट उज्जैन में, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं और महामंडलेश्वरों को विशेष आमंत्रित कर रहे हैं और एक एक के मुख से ब्रह्मा कुमारियों की तारीफ निकल रही है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि देखो कितने विघ्न आते हैं, ये उस समय की बात है, अभी तो देखो सबके मुख में यहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ जो सेवा कर सकती है ना वो और कोई नहीं कर सकता, महामंडलेश्वर तक भी यही कहते और सब ब्रह्मा कुमारियों को अपने अखाड़े में निमंत्रण दे रहे हैं, आप यहाँ भी आकर के भाषण करो, ऐसा भी हो रहा है। तो बहुत धूम मची हुई है सेवाओं की वहाँ पर भी, तो बाबा अपना कार्य करा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। और यहाँ मधुबन में तपस्या करने के लिए आए, तो ये सुंदर बैलेंस, यहाँ एक तरफ सेवा, परंतु वो सेवा में सफलता के लिए क्या जरूरी है, अपनी अंदर की तपस्या। तो आप सभी समय निकाल करके अपने बिजी स्केड्यूल, क्या नहीं कारोबार होगा हर एक का, लेकिन समय निकाल करके 3 दिन यहाँ आप रहेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि आप पूरा पूरा आपकी जो स्टे है यहाँ रहने का जो 3 दिन का प्रोग्राम है उसका पूरा पूरा लाभ लें। तो देखो आपको जो बैज मिला है वो पढ़ा आपने, क्या लिखा है उसके ऊपर? हाँ, अच्छी तरह से पढ़ा क्या? इस क्या नाम है इस भट्टी का? मौन तपस्या भट्टी पढ़ा ना? हाँ, तो ये तो मुश्किल है कि सहज है? मौन में रहना सहज है मुश्किल है? सहज है, सच्ची आवाज में आना सहज है या मौन में रहना सहज है? अच्छा, आवाज में आना सहज नहीं है? आवाज में आने से ज्यादा मौन में रहना सहज है? देखो देखो अभी धीरे धीरे निकल रहा है। आवाज में आना सहज है, अपने आप को रोकना बड़ा पड़ता है, मौन में रहना मना कुछ बोलना नहीं, पर मन भी मौन में रहे, ऐसे नहीं खाली मुख का मौन हो, पर मन भी मौन में रहे तो फिर मौन में रहना सहज है। पर मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं और मुख से मौन है तो फिर आवाज तो निकलेगा ही। इसीलिए मौन में रहना सहज है एक तरह से, क्योंकि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बोलना ही नहीं है। बोलना है तो सोचना पड़ता है ना, अभी हमको भाषण करना है कहीं तो सोचना तो पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, क्या बोलूंगी क्या बोलूंगी, कौन सा ऑडियंस है, किस प्रकार की पॉइंट्स देनी है, तो सोचना पड़ता है। अब भाषण भी नहीं करना है, बोलना नहीं है, शांति रहना है, बस बाबा की याद में रहना है, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है ना। तो वो सहज है या विचार सागर मंथन करना सहज है? तो विचार सागर मंथन तो भले करो, मना नहीं है, ज्ञान की बातें खूब सोचो। आपको कृति बहन खूब कराएगी है ना, वर्कशॉप कराएंगी ना? नहीं कराएंगी? हाँ, इंट्रोस्पेक्शन कराएंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये बनाती है। तो आप लोगों का जो सेंटरों पर तो होता होगा, लेकिन ये नई ढंग से कराती है, तो बहुत ही उमंग उत्साह दिलाती है और कितनी सुंदर सुंदर वो युक्तियां बताती है। तो आप 3 दिन पूरा इसका लाभ लेना। और भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने आकर के क्लासेस भी कराएंगे, वो तो होगा ही, लेकिन हमारी 3 दादियां तो यहाँ इस समय नहीं है, शांति वन में नहीं है, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन, में तीनों अहमदाबाद में है। बस कोई हिसाब किताब तो थोड़ा चुप तो करना पड़ता है, तो दादी जानकी भी वही है, डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट के लिए कहा है, क्योंकि दादी अपने आप को थकाती थी, वह इतना समझो दादी को बस मिलता है कोई भाई बहन मिले तो क्लास कराना तो थका देती है, खाती कुछ नहीं, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा बिल्कुल दादी को भी मौन में रहना है। लेकिन वहाँ वो भी कहाँ रहती है, तो भी दादी को तो इतनी खुशी होती है भाई बहने आते हैं, पर डॉक्टर ने कहा बिल्कुल रेस्ट में रहना है। अब दादी जानकी के कारण गुलजार दादी को भी दादी ने रोका हुआ है, क्योंकि दादी जानकी गुलजार दादी को देखती है तो शक्ति आ जाती है, तो इसलिए दादी गुलजार भी वही है, पर ठीक है तबीयत। दादी रतन मोहिनी जी भी अभी उज्जैन मेले में गए थे, तो उज्जैन मेले से जैसे वापस लौटे थे भाई रोड ही गए, क्योंकि रास्ता बड़ा टेढ़ा है, द फ्लाइट है न ट्रेन है, मतलब कुछ अलग ही है। तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया तो थोड़ा सा धक्का लगा है, तो भी अहमदाबाद में गए, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा चेकअप के लिए गए हैं। तो तीनों दादियां वहां है, अभी दादी रतन मोहिनी लौटती है, कब लौटती है पता नहीं, लेकिन मधुबन तो प्यारा घर अपना है ही है, और हम तो आपके साथ ही है। अभी शशि बहन को आना था, लेकिन शशि बहन को भी कुछ तबीयत, शशि बहन की भी ठीक नहीं है, इसलिए वो भी नहीं आ सकी, इसलिए फोन में कहा कि मैं अभी नहीं आ सकूंगी, तो इसलिए हमने कहा ठीक है, बाबा ने निमित्त बनाया है तो यहाँ पर हम आपके साथ हैं, कृति बहन तो है, शशि बहन तो मिलेंगी, और भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने आपसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और खूब ज्ञान रत्नों से आपकी झोली भरेंगे। लेकिन जो विशेष लक्ष्य रखना है कि एक तो भट्टी में पकना है, पकना भट्टी में पकना माना पकना, जब पकते पकते पकता है या पकती है कोई चीज आग में, तो उसका रंग रूप गुण सब बदल जाता है, बदल जाता है। तो जो भी हमारे कड़े संस्कार अगर हैं कोई, वो सब इस भट्टी में बदल जाए, आत्मा सच्चा सोना बन जाए। तो एक लक्ष्य तो ये है कि मुझे अपने जितने भी कड़े पुराने संस्कार हैं या कोई भी ऐसे संस्कार हैं, मुझे यहाँ से पूरे बदल करके जानी है, सब कुछ यहाँ इस यज्ञ में स्वाहा करके जाना है। इस भट्टी में एक पहला लक्ष्य तो ये रखना है। दूसरा लक्ष्य, इनसे और ऊंचा लक्ष्य है कि कितने हमारे सिर पर पापों का बोझा भी है, बाबा रोज मुरली में कहते हैं ये पापों का बोझा भी खत्म करना है। तो अभी ये मौका है, ऐसी योग तपस्या करो जो सब पापों का बोझा खत्म हो, आत्मा बिल्कुल कंचन बन जाए, फरिश्ता बन जाए, उड़ता पंछी बन जाए, डबल लाइट बन जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करे और इस दुनिया के जो भी आकर्षण है सबसे परे। आज भी बाबा ने कहा, आज की मुरली बहुत ही सुंदर थी, एक गीत पता नहीं सुना है या नहीं, कौन है माता कौन पिता है, छोड़ दे सारे जग के नाते, कुछ ऐसा गीत है, पता नहीं सुना है ऐसा गीत हा? बहुत पुराना गीत है आपके पास है जी, ढूंढो देखो, मैं 10-15 मिनट और बोलूंगी, थोड़ा देखो अगर है गीत तो हाँ हाँ लास्ट में बजा सकते हैं। तो बिल्कुल उस गीत के अंदर है कि ये सब जग के नाते छोड़ो, ये कौन है, बस एक से सर्व संबंध जोड़ो, वही मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन बच्चा सब एक है। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं ना, देह के रिश्ते नाते सब कर्म बंधन का रूप बन गए, संबंध तो शब्द नाम का हो गया, रिश्ते नाते सब बंधन का रूप बनते जा रहे हैं। उस दिन भी अखबार में आया था, देखो किसका मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ये 3 दिन हॉल में मोबाइल नहीं बजना चाहिए, सबके मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, ये सबसे पहली बात, मोबाइल सब स्विच ऑफ करना। आज ही रात को घर में इन्फॉर्म कर दो घर वालों को, आराम से पहुंच गए, चिंता की बात नहीं है, या हम 3 दिन बिल्कुल मौन भट्टी कर रहे हैं, कोई हमको फोन नहीं करो, ये हो सकता है, घर में बता सकते हैं, बता कर, वैसे ही बता के तो आए होंगे, और यहाँ आकर के और भी उनको आश्वासन दे दो कि हम आराम से पहुंच गए, नहीं तो कहेंगे कम से कम ये तो बताते कि आराम से पहुंचे कि नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता है ना आजकल क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो आराम से पहुंच गए बाबा की गोद में, अब हम मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, 3 दिन हमसे कोई बात न करे, घर में बता देना। तो इसीलिए ये विशेष हम यहाँ लक्ष्य रखें, और एक बाबा दूसरा न कोई, देह और देह के सब संबंधों को भूलना है। उस दिन हम अखबार में पढ़ रहे थे कि भारत में, चाहे दुनिया की भी, दुनिया में इतना नहीं है पर भारत में बहुत, जो भी परिवारों के झगड़े हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पर झगड़े, रोज हमारे पास कोई न कोई आते प्रॉपर्टी का झगड़ा, कुछ न कुछ बुद्धि में लाते, बात नहीं पूछो, आपस में ईर्ष्या, आपस में नफरत, भाई भाई में दुश्मनी, क्या नहीं हो गया है। तो क्यों ये सब कर्मों के हिसाब किताब अंतिम जन्म में पूरे हो रहे हैं? तो हम तो यही कहते हैं उसके पीछे मत पड़ो, छोड़ो तो छूटो, सब बंधनों से मुक्त होना है, वैसे भी घर जाना है, वापस घर जाना है, बस अब यहाँ का कुछ भी आकर्षण करने वाला है नहीं, कुछ भी रहा नहीं है। तो इसलिए जितना जितना हम अपने आप को हर बात से उपराम करते जाएंगे, उतना उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये 3 दिन आपको इस प्रकार का बहुत सुंदर मौका मिला है, इस मौके को का, इस मौके का पूरा पूरा लाभ लेना, यही हम आपसे चाहेंगे। अमृत वेला भी आपका वहीं करना है, हम शांति भवन में आपको वहाँ पसंद है या क्योंकि भले करो यहाँ आपके ऊपर, क्योंकि इन्होंने पिछला ग्रुप जो उसके पहले कराया था सबको ओम शांति भवन में ले गए थे अमृत वेले, क्योंकि क्या है यहाँ जो और भी बैठते हैं कोई, परंतु अगर ओम शांति भवन में करना चाहो तो गर्मी तो बहुत है वहाँ, वो भी है तो इसलिए यहीं ठीक है। हाँ वहाँ फिर पंखे वंखे तो है नहीं, या तो कूलर चलाए सब चलाए, फिर रात को तो बंद कर देते, रहने दो यहीं ठीक है। तो रात्रि तो अमृत वेला भी आपका यहीं होगा। वैसे तो जो मधुबन में रहते हैं या सेवाधारी है उनका तो हम शांति स्तंभ पर करते हैं, परंतु अगर आपको कुछ कमेंट्री से कराना है तो फिर यहीं ठीक है, आप बात करो सुनो।
माइक ठीक रहेगा?
हाँ माइक खोलो,
क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेडली बैठ पाएंगे और पूरा समय अच्छी तरह बैठ पाएंगे, वहाँ सबके बीच उठना बैठना आना जाना बहुत कुछ लगा रहेगा, इसीलिए हम यही करेंगे और सभी लक्ष्य बनाएंगे कि टाइम पर हमें पहुँचना है और 4:45 व्हाइट लाइट होने के बाद फिर ही जाना है, ऐसा हर एक मेंटली अपने को तैयार करके आए।
हाँ हाँ यही ठीक है। और फिर तो आपको दिनचर्या भी बताएंगी सारी और उसके अनुसार आपके प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन सब में लक्ष्य एक ही है कि हमारी बुद्धि और कहीं न जाए, बस तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, एक बाबा दूसरा न कोई, फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना, ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, ये तो हमारा उद्देश्य है। फरिश्ता बनकर घर जाना है, बिंदु रूप बनना है, देवता बनना है, चार पांचों स्वरूपों की स्मृति लानी है, वो सब आपको अनुभव तो कराएंगे, लेकिन मन बुद्धि इसी में लगा रहे, संसार की कोई भी बात बुद्धि में ना आए, दुनिया में क्या हो रहा है, गृहस्थी में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, इन सब बातों से परे, अखबार टीवी वीवी कुछ नहीं है, कि इच्छा होगी को देखें, जरूरत ही नहीं है, क्या रखा है नर की तो है, क्या समाचार भी होगा, परंतु कुछ ऐसी बात होगी तो आपको बता देंगे, इसलिए ख्याल नहीं करना, कुछ तो होगा अगर, इसीलिए बाकी बाह्य दुनिया की बातों में तो जाना ही नहीं है, बस बाबा और मैं। हमारी बड़ी दीदी थी ना, तो बड़ी दीदी एक बहुत अच्छी बात सुनाती थी कि रोज सवेरे उठकर 5 केले खाओ, बड़ी दीदी का ये बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन था, रोज सवेरे सवेरे उठकर 5 केले खाओ। तो दीदी पूछती थी, खा सकते हो 5 केले सवेरे सवेरे उठ करके? तो कहके हाँ दीदी खा सकते हैं, तो उनको लगता पता नहीं सचमुच केले खाना है। तो दीदी कहती थी 5 केले खाना माना, पहला है केला अकेले आए हैं, ये पहला केला, कोई देहधारी याद ना आए, अकेले आए हैं अकेले जाना है, ये दूसरा केला। तीसरा, अकेले में भले या संगठन में है लेकिन अकेले में अकेला बनकर अकेले को याद करना है। तो कितने केले हो गए? अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। और एक के साथ तो बहुत बातें जुड़ी हुई है, एकांत, एकाग्रता, एक नामी, एकानामी, तो एक में सब कुछ समाया हुआ है, बस एक के बाद सब 0000 लगाते जाओ तो कमाई आपकी बढ़ती जाएगी। कितने माला माल बन जाएंगे, बहुत माला माल बन करके यहाँ से आप 3 दिन के बाद जाएंगे। तो यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। बाकी प्रोग्राम बता दो फिर लास्ट में यही पूरा करेंगे, थके हुए होंगे। नीमच के तो बाय रोड आए ना, तो कितने बजे निकले? हाँ दिन में कुछ रेस्ट भी नहीं किया होगा, कितने बजे पहुंचे? अच्छा, तो थके होंगे तो अभी जल्दी भोजन करके विश्राम करना, फिर कल से आपकी बहुत व्यवस्थित दिनचर्या शुरू करेंगे, थोड़ा बता देंगे
जी। दिनचर्या हमारी इस तरह से रहेगी, सुबह 4 से 4:45 हम यहीं पर अमृत वेला करेंगे, उसके बाद 6:30 बजे से 7 योग होगा, 7 से 8 बजे तक जैसे मुरली क्लास होता है वो ओम शांति भवन में होगा, और उसके बाद 9 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू होगी। दिनचर्या कुछ इस तरह बनाई हुई है कि हम लोग 1-1.5 घंटा अलग अलग जगह पर चारों ही धामों का फुल साधना का फायदा उठा सके, और इसीलिए सभी का लक्ष्य रहे कि जिस समय जहाँ जाने के लिए कहा जाए तो उस समय वहाँ ही जाकर के अपनी योग तपस्या का हर एक लक्ष्य बनाए। हम कोई भी कहाँ आगे पीछे नहीं होंगे, जिस स्थान पर जहाँ जब जाकर के योग करना है हम उसका फुल फायदा उठाएंगे। तो चारों धामों की सुबह भी और शाम को भी पहले यात्रा करेंगे।
एक मिनट ये बताना मैं भूल गई, मैंने बताया ना बाबा के कमरे में मात पिता का अनुभव, बाबा के हिस्ट्री हॉल में टीचर का अनुभव, फिर ओम फिर शांति स्तंभ पर सतगुरु का अनुभव, अशरीरी स्थिति कैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, सतगुरु ने कैसे हमें संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया, कर्मातीत बनाया जैसे ब्रह्मा बाबा बने, तो सतगुरु की स्मृति, और फिर बाबा की झोपड़ी में सखा की स्मृति, तो मात पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु ये सब संबंध आप अनुभव करना इन चारों धामों में, ठीक है।
और इसके बाद पिछले बहुत समय से प्यारे बाबा हमें अनुभूति की गहराई में और एक गहन तपस्या की गुफा में जाने के लिए बार बार कहते आए हैं, और इसीलिए क्लास के बाद हर एक क्लास के बाद हम 1-1 घंटा आत्मनिरीक्षण या फिर गहराई से अनुभूति संपन्न योग तपस्या, सुबह में हम आत्मनिरीक्षण करेंगे और शाम के टाइम पर विशेष योग तपस्या, इस तरह से पूरी ही भट्टी का आयोजन इस तरह से किया है जिसमें हम मैक्सिमम अपने अंदर जांच सके, अपने को देख सके, जहां जहां हमें अभी भी परिवर्तन इस रूप से करने की आवश्यकता है कि हम बाबा का एक अच्छा शक्तिशाली माध्यम बने। अभी अभी शीलू बहन जी सुना रही थी तो मैं सोच रही थी कि देखो तीनों ही दादियां हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन हमारी तीनों मुरब्बी दादियों की प्रतिकृति के रूप में कहो या रिप्रेजेंटेशन के रूप में कहो या उनकी साकार मूर्ति के रूप में कहो, हमारी ये दीदियां हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने भी इतना जल्दी सोचा नहीं होगा कि ये दादियां यहाँ नहीं होंगी और वो पालना जो दादियों से हमें मिली है वही पालना हमें ट्रांसफर करनी होगी। तो जिस तरह से बाबा इन सब से माध्यम बन के करा रहा है तो अपने अपने सेवा स्थानों पर हमें बनना है, तो ये एक बहुत सुंदर विजन हम यहाँ से लेकर के जाएं, बहुत अंदर की एक गहरी अपनी खुद की अनुभूति, खुद का परिवर्तन हम लेकर के जाएं, इस हिसाब से ये दिनचर्या बनी है।